मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग जो पावर ऑफ एलिमिनेशन पर कुछ बातें कर रहे थे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न मेरे सामने आए हैं। बेहतर होगा कि मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूं, क्योंकि पावर ऑफ एलिमिनेशन का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उन प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी है। देखिए, अब प्रश्न तो कुछ ही लोगों ने पूछे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि चूंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आए हों, लेकिन पूछने का साहस कुछ ही लोग कर पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर साहस कर भी लें तो तकलीफ बहुत कम लोग उठा पाते हैं। तकलीफ का मतलब है कि ईमेल लिखा जाए। तो मैं उन प्रश्नों पर आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण खबर, और आप समझ गए होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण खबर आज मैं किसे कह रहा हूं। जो विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में इस पर कुछ लिखेंगे तो होना चाहिए जो शब्द वो होगा विमुद्रीकरण, डिमोनिटाइजेशन। नोटबंदी शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, इसका तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए। अब मैं छोटी छोटी बातों की तरफ आपका ध्यान ले जा रहा हूं। मेरे पास कल एक मेल आया है, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है, मतलब IIT का पढ़ा हुआ स्टूडेंट तो आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं तो एक अलग से अपना स्थान रखता ही है। सोच करके देखिए कि वो 5 बार मेंस में बैठ रहा है और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेंस में हो सकता है कि 1-2 बार प्री में भी नहीं हुआ हो, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। उसने अब मुझसे कुछ राय जाननी चाहिए है। ठीक है, वो एक अलग बात है। सोच करके देखिए कि क्या कारण है कि लगातार मेंस में उसे सफलता नहीं मिल रही है। कोई तो कारण होगा। और अगर मेंस में सफलता नहीं मिली और प्री में सफल हो गए तो उसका भी कोई विशेष अर्थ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आप प्री मेंस अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कोचिंग क्लासेस में थोड़ी सी जगह मिल जाती है, एक अवसर मिल जाते हैं कि वहां जाकर के आप स्टूडेंट को पढ़ाने लगे। लेकिन आप इसलिए तो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ रहे थे कि मुझे पढ़ाने का मौका मिल जाए। वो तो फिर आप अनमने भाव से, ठीक है चलो ये नहीं है तो वो नहीं है, आप वो करने लगते हैं। और ये बात अलग है कि फिर आप उसी को एंजॉय करने लगे, लेकिन फिलहाल तो आपका उद्देश्य यही होता है कि मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊं। मेरे दिमाग में सारी बातें होती हैं। आप सब जो मेल लिखते हैं मैं पूरी गंभीरता के साथ उन्हें पढ़ता हूं, पूरी गंभीरता के साथ, और उससे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूं, अपने लिए बहुत सारी चीजें निकालता भी हूं जिनका इस्तेमाल मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में करता हूं, मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में करता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में करता हूं, भले ही वो आपको पता न चले। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में मैंने आज जो एक सलाह दी है आप सबको कि जब आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, साहित्यिक भाषा अलग होती है, बोलचाल की भाषा बिल्कुल अलग होती है। नोटबंदी बोलचाल की भाषा है, अखबारों में भी आपको यही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो वो होना चाहिए विमुद्रीकरण। आपको मालूम है कि सरकार ने 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया था और उसको लेकर के फिर जनहित याचिकाएं दायर की गई थी जिनकी संख्या 50 से ऊपर हो चुकी थी, 58 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया, याचिकाओं को, और इस पर कल उन्होंने अपना फैसला दिया। अब आप देखें कि सरकार का एक निर्णय है कि विमुद्रीकरण किया जाना चाहिए, जो बड़े नोट है 500 और 1000 के उन्हें बंद कर दिया जाएगा, और जिनके पास ये नोट है वो बकायदे जाकर के बैंक में इसके बदले में जो सही नोट हो सकते हैं वो ले लें, जो नए नोट हैं वो ले लें। सरकार ने इसके लिए अपना समय भी दिया। इसको लेकर के बहुत से लोगों को दिक्कतें भी हुई, उस समय काफी परेशानी भी हुई, तो फिर जनहित याचिकाएं दायर कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अगर आप सोचिए तो एक प्रश्न आपके दिमाग में खड़ा होना चाहिए कि भाई इसमें अब जनहित याचिका की क्या बात थी, इसमें क्या मामला आ गया, भाई सरकार ने एक फैसला लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो जनहित याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इसे स्वीकार किया कि इसमें प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं किया गया, यानी कि संवैधानिक दृष्टि से केंद्र सरकार ने जो ये किया है वो सही है या नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके संवैधानिक प्रावधानों की जांच परख करने के लिए इन याचिकाओं को स्वीकार किया और उसी आधार पर उसने अपना निर्णय भी दिया है। अब मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को किन आधारों पर व्यक्त किया, यानी कि जो सरकार ने विमुद्रीकरण का निर्णय लिया था उस निर्णय को किन आधारों पर सही ठहराया। मेरी समझ से ये प्रश्न ज्यादा सही होगा। तो जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपके उत्तर की प्रायोरिटीज भी, जो तथ्य है उनकी प्रायोरिटीज के आधार पर होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि सरकार इसके संवैधानिक प्रक्रिया को देख रही थी, उसी के आधार पर याचिका स्वीकार की गई। तो सीधी सी बात है कि आपके उत्तर का भी जो पहला पॉइंट होगा वो इसी को क्लियर करने वाला होना चाहिए। और सरकार ने बिल्कुल साफ साफ तौर पर कहा कि बकायदे जो एक्ट है आरबीआई का, की धारा जो 26(2) है, उसके तहत सरकार को यह अधिकार मिल जाता है, लेकिन यह अधिकार जो है वो मनमानी करने की ताकत नहीं देती। ये बात बिल्कुल सही है। उसमें सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, और सुरक्षात्मक उपाय यह है कि सरकार विमुद्रीकरण की शक्ति का अपना इस्तेमाल, जो केंद्रीय बोर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो केंद्रीय बोर्ड है, उसकी सिफारिश पर ही कर सकती है, उसकी सिफारिश पर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं उससे साफ पता लगता है कि 6 महीने तक इसको लेकर के केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में लगातार बातचीत होती रही है। तो इसीलिए सरकार ने जो निर्णय लिया अपने आप में सही है। 5 जजेस की बेंच थी जिसमें 4 ने इसे सही माना, 1 जज ने इस निर्णय के अगेंस्ट में अपना निर्णय दिया, यानी कि उन्होंने सही नहीं माना। अब आप देखिए कि उन्होंने सही निर्णय क्यों नहीं माना। उनका यह कहना है कि जो 26(2) के जो अधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए वो रिजर्व बैंक की तरफ से होना चाहिए, जबकि ये जो प्रस्ताव आया है वो सरकार की तरफ से आया है कि नोटबंदी किया जाए या नहीं किया जाए। रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार के पास ही जाना चाहिए था कि भाई नोटबंदी किया जाना चाहिए और तब फिर यह कदम उठाया जाना चाहिए था, लेकिन जो 4 जजेज हैं इसे प्रक्रियागत खामी नहीं मानते हैं। यह आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद देखिए फिर जो दूसरे पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो आज अखबारों में बकायदे दिए हुए हैं कि किस तरीके से सरकार का उद्देश्य क्या था। अब जानते हैं कि जो जाली नोट है उन्हें बाहर किया जाए, जो काला धन है उन्हें बाहर किया जाए, जो आतंकवादियों की जो फंडिंग हो रही है उसे कम किया जाए, खत्म किया जाए, ये सारे उसके उद्देश्य थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है कि इनमें उद्देश्य बहुत से सफल हुए, थोड़े सफल हुए, कुछ बिल्कुल भी सफल नहीं हुए या पूरी तरह से फेलियर ही हो गए, लेकिन वो फिर ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि सरकार के निर्णय को इसी आधार पर सही और गलत नहीं ठहराया जा सकता कि वो फिर अपने निर्णय में वो सही बाद में सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। जो निर्णय लिया गया वो सही था या नहीं था वो ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, इसके बाद जो उन्होंने छोटी छोटी बातें कही हैं वो सच पूछे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो 2 बातें हैं वो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगी। इसलिए जब आप आंसर राइटिंग करें तो याद रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ही उसमें आने चाहिए। हाँ, अगर कुछ और पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बाद में आप उन्हें चाहें तो एक ही लाइन में कॉमा 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 करके दे सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट्स आपके कभी भी मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मान करके चलिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। अलग तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, चाहे तो आप उन्हें शामिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि 2016 से पहले भी 2 बार सरकारों ने इस तरह का निर्णय लिया है, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई के पास ये ताकत नहीं है कि वो अकेले इसका निर्णय ले सके, बिना सरकार के सलाह के वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है, किसी भी सीरीज के, यानी कि केवल 500 और 1000 को, किसी को भी कर सकती है। संविधान बकायदे इसके लिए उसे अधिकार देता है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट्स थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि जनहित याचिका के केंद्र में यही 2 तथ्य सबसे महत्वपूर्ण थे। फ्रेंड्स, अब देखिए कि इसको लेकर के 2-3 सवाल बड़े आराम से उठ करके खड़े होते हैं। पहला तो यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जनहित याचिकाएं स्वीकार करनी चाहिए। इन पर आप विचार कीजिएगा। मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इसी पैटर्न पर पूछे जा सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों को भी स्वीकार करती है जनहित याचिका के अंतर्गत, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर सरकार निर्णय लेने में बहुत देरी करने लगेगी, टालती चली जाएगी या निर्णय ही नहीं लेगी। सन 2013, 14 या 15 के आसपास मेंस में इसको लेकर के क्वेश्चन आया भी था कि कैसे वो जो पीरियड रहा है वो एक तरह से डिसीजन पैरालिसिस का पीरियड रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय सरकार निर्णय ही नहीं लेती थी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण सूचना का अधिकार या कुछ इस तरह की स्थितियां थी कि निर्णय ही नहीं लिए जाते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हर चीज के बारे में जनहित याचिका स्वीकार करने लगे सरकार के निर्णयों पर, तो इसका फिर पता लगा कि निर्णय लेने पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर तथ्य आपके दिमाग में स्पष्ट होंगे तो बिल्कुल आप उसको ले सकते हैं। एक बात आप ये भी निकाल सकते हैं, विचार करके देखिए, मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं कि सरकार ये भी तो कर सकती है कि अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर सकती थी। क्या ऐसा संभव है कि अध्यादेश ले आती नोटबंदी का और मामला खत्म हो जाता, क्योंकि अध्यादेश तो ला सकती है, इसके बाद 6 महीने तक वो जारी रह सकता है, फिर जब संसद का सत्र जैसे शुरू हो इसको बकायदे एक्ट के रूप में पारित कर सकती है, उसमें तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुमत की सरकार को तो अध्यादेश को स्वीकार करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी होती नहीं है। तो एक ये भी प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो थोड़ा सा सोचने के आधार पर होनी चाहिए कि अब ये जो घटना घटी है इसको लेकर के हम और किन किन एंगल से विचार कर सकते हैं, और कल भी मैंने इसी पर बात की थी। अब आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, पहला मेरे पास एक प्रश्न आया था कि सर, आप जो सी सेट का नाम आपने लिया, मैंने बताया था ना कि मेरे पास जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है उसका सेट सी है, तो उनका यह कहना था कि मैं सी सेट के पेपर में प्रश्न ढूंढता रहा, मुझे कहीं नहीं मिला, उससे काफी परेशानी होती रही, बाद में मुझे समझ में आया कि आप जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के सेट सी की बात कर रहे हैं, तो सर प्लीज अब आगे से आप जब भी ऐसा बोलें तो उसमें इसको क्लियर कर दें। ये एक बात थी। दोस्तों, क्या आप इस समस्या को पढ़ने की समस्या से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, पढ़ने की समस्या और सुनने की समस्या दोनों एक ही है। मैं कह रहा हूं ना कि पावर ऑफ एलिमिनेशन आपका तब तक बहुत अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे सही तरीके से। अगर मैं, बताइए, पावर ऑफ एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन जनरल स्टडीज का पढ़ रहा हूं, और यदि उसी समय मैं सी सेट शब्द का इस्तेमाल भी करता हूं, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाना चाहिए? क्या मैं सी सेट के पेपर के बारे में बात कर रहा हूं? बहुत स्पष्ट है ना। तो फिर यह चीज दिमाग में क्यों आती है, सोच करके देखिए, क्योंकि अगर ये चीज इसमें आ रही है तो याद रखिए पढ़ने के दौरान भी ये चीजें आएंगी। नंबर वन। नंबर टू, मेरे पास एक मेल आया है और उसमें उन्होंने पूरे एक्ट के बारे में, जो जो एक्ट होते हैं काफी कुछ उसमें उन्होंने भेजे हैं, उसमें एक्ट का एक प्रोविजन है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि सर इसको एनालाइज कीजिए, और उसके आधार पर उनको लगता है कि ये जो ऑप्शंस हैं वो उस तरह से सही नहीं उतरते हैं। ठीक है, यहां मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक तो ये जनरल नॉलेज का पेपर है, दूसरा हम जब पावर ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो पावर ऑफ एलिमिनेशन को हम एकदम फैक्ट के आधार पर कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम बात किसकी कर। अगर आपको एक्ट की बहुत अच्छी जानकारी, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स जो सेलेक्ट का जो चयन होता है प्री एग्जामिनेशन के लिए, उनका भी यही है, तो वो तो एक्ट के आधार पर बिल्कुल क्लियरली कर देंगे क्योंकि इसे वो पढ़ते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो एक्ट को कितनी गहराई से पढ़ेंगे, कितना एनालिसिस करेंगे, तो हमारे पास जो विकल्प बचता है वो पावर ऑफ एलिमिनेशन ही बचता है। और मैंने कभी ये नहीं कहा है कि पावर ऑफ एलिमिनेशन में आप 100% करेक्ट होंगे, मैंने कभी नहीं कहा। दो बच ही जाते हैं तो 50% की पॉसिबिलिटी होती है सही होने की, अगर हम गलत हो गए तो 33% का नुकसान उठाना पड़ेगा, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, जब पावर ऑफ एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम एग्जैक्ट फैक्ट को लेकर नहीं चल सकते। अगर हम एग्जैक्ट फैक्ट को लेकर के चल रहे हैं तो फिर हम पावर ऑफ एलिमिनेशन को लेकर नहीं चल सकते। तो आप सबके दिमाग में यदि इन दोनों बातों से संबंधित कोई प्रश्न मंडरा रहा हो, उठ खड़ा हुआ हो, तो मुझे लगता है कि इससे आपके उस जिज्ञासा का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, नए वर्ष पर आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, कितनों के मैं यहां नाम लूंगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार इस स्नेह के प्रदर्शन के लिए, इस सम्मान के प्रदर्शन के लिए। मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आप सबके प्रति इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।